Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesam Rajata Girinibham चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर् व्याघ्रकृत्युं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगीन्द्रमथाश्यशिष्यं श्रीशंकराचार्यमथाश्य पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंतोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदि दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदीय श्वेताश्वतर उपनिषद के आधार पर पांचवें अध्याय में पांचवें मंत्र की व्याख्या है। यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः पाच्यांश्च सर्वान् परिणामयद्यः सर्वमेतत् विश्वमदितिष्ठत्येको गुणाश्च सर्वान् विनियोजयद्यः तद्वेदगुह्योपनिषत्सुगूढम् तद्ब्रह्मा वेदते ब्रह्मयोनिम् ये पूर्वदेवा ऋषयश्च तद्विदुः ते तन्मया अमृता वै बभूवः गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता स विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवात्मा प्राणाधिपः सञ्चरति स्वकर्मभिः। परमात्मा के बारे में जिसने ये जगत बनाया है उसके बारे में विचार चल रहे हैं। विश्व जाल विश्व सृष्टि माया जाल की रचना वो परमात्मा करता है, ये बात इससे पहले मंत्रों में कहा। अब ये कह रहे हैं यच्च स्वभावं पचति, परमात्मा का जो कर्म है वो कच्चा कर्म नहीं है। परमात्मा जो कुछ करता है वो पक्का करता है। हम लोग तो कभी कभी भोजन बनाते थे आश्रमों में, तो कभी भात कच्ची रह जाती थी, कभी रोटी कच्ची हो जाती थी, कभी सब्जी कच्ची। तो आश्रम का जो व्यवस्थापक है वो डांटता था तुम ठीक से पका नहीं पाते हो। ये समस्या आप लोगों के साथ भी हुई होगी, तो काम करो तो पक्का करो, परमात्मा का कहना है, कच्चा मत करो। तो यही तो जीवात्मा और परमात्मा में अंतर है, क्योंकि जीवात्मा कभी कच्चा भी कर जाता है, प्रमाद भी कर जाता है, लेकिन परमात्मा के कर्मों में कभी भी इस कच्चापना नहीं है, प्रमादपना नहीं है। श्रुति कह रही है कि यच्च स्वभावम पचति, स्वभावम, स्वभाव का दो अर्थ करते हैं, स्व शब्द का अर्थ स्वयं, खुद, अपने में, भाव माने रहने वाले। तो अपने में रहने वाले को स्वभाव कहते हैं, स्वभाव यानी अपने में रहने वाले पदार्थ, स्वभाव। और व्यवहार में स्वभाव आदत को भी कह देते हैं, मनुष्यों की जो आदत है उसको स्वभाव शब्द से कहा जाता है, उसका ऐसा स्वभाव है। वो इतना चंचल क्यों है? बोले उसका स्वभाव है। वो इतना बोलता क्यों है? तो बोले उसका स्वभाव है। ये कुछ भी नहीं बोलता है, बोले उसका स्वभाव है। स्वभाव शब्द का अर्थ होता है आदत। यहां स्वभाव शब्द का अर्थ पहले परमात्मा के भाव, उसमें रहने वाले भाव। आचार्य शंकर ने स्वभाव शब्द का अर्थ, शंकराचार्य जी ने स्वभावम, अपने में रहने वाले जो भाव हैं क्या है, तो बोले ये पंचमहाभूत आदि हैं। परमात्मा में रहने वाले भाव, पदार्थ, वस्तुएं, तो क्या है परमात्मा में रहने वाले भाव, पदार्थ, वस्तुएं क्या हैं? तो बोले यही पंचमहाभूत। आकाश परमात्मा में रहने वाला भाव पदार्थ है। वायु परमात्मा में रहने वाला भाव पदार्थ है। तेज परमात्मा में रहने वाला भाव पदार्थ है। जल परमात्मा में रहने वाले भाव पदार्थ हैं। और पृथ्वी परमात्मा में रहने वाला भाव पदार्थ है। ये सारे पंचमहाभूत उसी परमात्मा में सन्निहित हैं, अवस्थित हैं। परमात्मा इस पंचमहाभूतों की प्रतिष्ठा है, ये कल के मंत्रों में भी बताई गई है। परमात्मा अधिष्ठाता भी है, ये पंचमहाभूतों का नियंता भी है, नियमन करने वाला भी है। और परमात्मा इसका अधिष्ठाता भी, आधार भी है। और परमात्मा इसके सर्जक भी है, उसी ने इस भूत के जालों को, माया जालों को उत्पन्न किया। पचति, पक्का करता है, स्वभावम पचति। पृथ्वी को पृथ्वी ही रहना है, सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक पृथ्वी को अन्यथा होना नहीं है, यही स्वभावम पचति है। जल को जल ही होना है, अन्यथा नहीं होना है। तेज को तेज ही होना है, अन्यथा नहीं होना है। वायु को वायु, आकाश को आकाश, इस तरह अपने में विद्यमान तमाम इन पंचमहाभूतों को इस तरह पकाता है कि इसमें अन्यथा होने की संभावना नहीं है। जैसे कुंभकार कच्ची मिट्टी को लेता है और उस कच्ची मिट्टी के माध्यम से घट बनाता है, घड़ा बनाता है, और उसके बाद उस घड़े को पक्का करने के लिए पकाता है, अग्नि में पकाता है। तब वह पका हुआ जो घड़ा है मिट्टी का, वह इतना मजबूत होगा अन्यथा यदि कच्चा हो तो घड़ा तो फिर फूट जाएगा, छोटे से भी आघात से फूट जाएगा। यच्च स्वभावं पचति, यच माने यत, यह जो, जो परमात्मा स्वभावं पचति, हर वस्तु के स्वभाव को पकाता है। अब स्वभावं शब्द का अर्थ उनके स्वभाव को लो, गुणधर्म को लो। पृथ्वी को उसने किस तरह पकाया, किसको? बोले पृथ्वी को इस तरह पकाया कि इसमें गंध इतना मजबूत, इतने पक्का पृथ्वी में गंध डाल दी, पृथ्वी कभी भी गंध रहित नहीं हो सकती। इसलिए पृथ्वी का लक्षण ही बनाया नैयायिकों ने, तत्र गंधवती पृथ्वी। यदि ये गंध पृथ्वी में कभी रहे और कभी न रहे तो ये गंधवान पृथ्वी कच्ची पृथ्वी कहलाएगी। और क्योंकि पृथ्वी में गंध नित्य संबंध से रहता है, पृथ्वी को गंध से युक्त करके उसको ऐसा पका दिया। ये रंगरेज होते हैं कपड़े को रंगने वाले, ड्राई क्लीनर, रंगरेज, वस्त्रों में रंग चढ़ाते, अलग अलग वस्त्रों में रंग चढ़ाते। आजकल तो हमारे कपड़े भी, जोगी के कपड़े, कासाय वस्त्र, ये रंग पूरे रेडीमेड बाजार में आने लग गए, पहले नहीं होता था। तो हम लोग करते क्या थे कि सफेद कपड़े ले लेते थे, फिर उसके बाद गेरू नाम का एक पत्थर होता है, खनिज, उस गेरू नामक पत्थर को फिर रगड़ते थे पानी में और उस कपड़े को डुबोते थे। इस तरह गेरू चढ़ाते थे सफेद कपड़े में, लेकिन वह कच्चा पत्थर घंटों लगाकर उसको घिसो, घिस करके फिर कपड़े में रंगो, जब उसमें साबुन लगा दिया तो फिर सारा का सारा रंग निकल गया। तो जिस दिन उस कपड़ों में साबुन लगाया कि वो रंग सब चला गया। इसलिए हफ्ते भर तो बिना साबुन के पानी में निकालते थे कपड़े, और जब कभी साबुन लगाना हुआ तो फिर तैयारी करो रंग चढ़ाने की, पत्थर और पत्थर लेकर, गेरू और पत्थर लेकर घिसो फिर चढ़ाओ। तो महीने में 3-4 बार गेरू चढ़ाना ही पड़ता था। तो आजकल फिर बाद में फिर किसी ने कहा थोड़ा पक्का करने के लिए उसमें फिटकरी मिलाओ, तो किसी ने कह दिया तो फिर फिटकरी भी उसमें मिलाते थे, फिर वो पत्थर को रगड़कर, गेरू को रगड़कर रंग चढ़ाते थे, तो एक हफ्ते की जगह 2 हफ्ते टिक जाता था, लेकिन दूसरी बार साबुन लगाया तो वो भी खाली हो जाता था। तो अब तो इतनी सुविधा कर दिया है कि रेडीमेड रंग आ जाता है, इतना पक्का गेरुआ रंग, कासाय रंग बाजार से लाओ और कपड़ों में चढ़ा दो। तो ठंडे पानी से चढ़ाओगे तो वो भी 2-4 महीने में रंग, 1-2 महीने में उतर जाता है, फीका पड़ जाता है, लेकिन पकाकर पानी में उसको चढ़ाओगे तो पक्का हो जाएगा। फिर भी हम लोग चढ़ाएंगे तो उस तरह नहीं चढ़ा पाएंगे जिस तरह रंगरेज चढ़ाते हैं। वो लोग तो उसमें तेजाब क्या क्या मिलाते, केमिकल और मिलाकर खूब पकाते तो इतना मजबूत हो जाता है रंग, कि बरसों उतरता नहीं, फीका नहीं पड़ता है। यच्च स्वभावं पचती ही, जिस तरह रंगरेज कपड़ों में रंग पकाकर इतना मजबूत, इतना गाढ़ा, इतना मजबूत चढ़ा देता है कि वह रोज के रोज साबुन लगाओ फिर भी उसका रंग फीका नहीं पड़ता है। परमात्मा ठीक इसी तरह पृथ्वी को इस तरह पका देता है, पृथ्वी को गंध में इस तरह पका देता है, फिर वह गंध कभी भी पृथ्वी से उतरता ही नहीं। जैसे कपड़े इस तरह, कपड़े का रंग इस तरह पका देता है रंगरेज कि वह रंग कपड़े से नहीं उतरता, इसी तरह गंध पृथ्वी में इस तरह पका देता है कि पृथ्वी में इससे गंध कभी उतरता ही नहीं। अब रही बात, परमात्मा ने सुगंध और दुर्गंध नहीं चढ़ाया था पृथ्वी में, केवल गंध चढ़ाया था। अब उस गंध को जीवात्मा भोग्य बनाकर, कभी अनुकूल बनाकर सुगंध बनाता है तो कभी प्रतिकूल होकर दुर्गंध बनाता है। गंध को सुगंध बनाने वाला जीवात्मा, गंध को दुर्गंध बनाने वाला जीवात्मा, किसको सुगंध कहोगे किसको दुर्गंध कहोगे? सुगंध दुर्गंध ये एक ही गंध के दो नाम हैं। अनुकूल को सुगंध, प्रतिकूल को दुर्गंध। गंध तुम्हारे अनुकूल हो गया सुगंध, गंध तुम्हारे प्रतिकूल हो गया तो दुर्गंध। तो किसको दुर्गंध किसको सुगंध? गंध है पृथ्वी में। महात्मा लोग एक दृष्टांत देते हैं ना, कोई एक राजा था, कहीं शिकार खेलने के लिए चला गया, जंगल में भटक गया, तो रात्रि हो गई तो उसने आश्रय खोजा कि कोई आश्रय मिले, तो कहीं दूर धुआं उड़ता हुआ देखा, तो एक अनुमान कर लिया कि इतरे त्रवन्नी तत्र तत्र धूमसाचर्य नियमो व्यक्ति, जहां जहां धुआं रहता है वहां अग्नि अवश्य रहती है। और ये अग्नि का और मनुष्य के, ये सृष्टि के आदि से ही संबंध है, और जहां अग्नि रहती है वहां मनुष्य रहता है। देख लो, अनुमान का लक्षण है, जहां धुआं है वहां अग्नि रहती है, और जहां अग्नि है वहां आसपास में मनुष्य जरूर रहते हैं। उस अनुमान से धुएं को देखकर वो अग्नि की खोजता हुआ गया, मनुष्य को खोजता हुआ गया, तो संयोग से एक नदी के किनारे में एक मछुआरा, बड़ी नदी थी वहां बहुत मछलियां रहती थी, तो मछुआरे ने वहीं अपना डेरा बना लिया था, झोपड़ी बना ली थी, और मछली पकड़ता था, वही मछली बेचता था, वही मछली खाता था, तो मछली उसके जीवन की व्यवसाय थी उस मछुआरे की। तो झोपड़ी में पहुंच गया मछुआरे के, और जाकर कहने लगा कि मैं इस राज्य का राजा हूं, इस तरह शिकार खेलने के लिए आया तो भटक गया, मुझे एक रात अंधेरा हो गया, एक रात यहां व्यतीत करनी है तुम्हारे आश्रय में। मछुआरा समझने लगा, कहने लगा कि हो मेरा भाग्य है, आप जैसे को स्वागत करना कर पा रहा हूं, लेकिन हम तो मछुआरे जाती हैं, हमारी कोई वैभव संपदा है ही नहीं, यही है जो वैभव, यही है संपदा है, जो कुछ है यही है झोपड़ी, फिर भी आपको रात्रि व्यतीत करनी है, आप रहिए आराम से रहिए, जो मेरे पास है वो आपके लिए स्वागत में हाजिर है, भूख लगी है तो ये मछली है, बोल देता हूं इस मछली को खा लो। राजा ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे एक रात व्यतीत करनी है तुम्हारे आश्रय में। अब उस झोपड़ी में राजा वहां रह गया रात्रि को, तो राजा, उस मछुआरे ने सोचा कि राजा है तो अपना बिस्तरा उसको खाली कर देना चाहिए, तो अपने बिस्तरे में उसको सुलाया, अपने नीचे चटाई उछाकर सोने लगा, ठंडी थी, तब राजा को ठंडी लगी तो उसने उसके कंबल को खींच लिया ओढ़ने के लिए, तो इतना वो झोपड़ी में जिधर देखो उधर मछली, तो इतना दुर्गंध आ रहा था कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। वो दुर्गंध, वो कम्बल ओढ़े तो दुर्गंध मच्छी का। आप लोग देखते हो या मुंबई में चर्च गेट में जाओ है, खड़े होना मुश्किल हो जाता है। कोई ट्रक मछली लेकर जा रहे हो तो फिर सड़कों में ही खड़े होना मुश्किल हो जाता है। तो राजा को ऐसे ही हो गए, बहुत मुश्किल हो गए। जैसे तैसे उसने रात व्यतीत की। ये कैसे रहता होगा ये व्यक्ति ऐसी दुर्गंध में, हमको एक रात व्यतीत करना इतना मुश्किल हो गया, वो तो यही पैदा जिंदगी व्यतीत कर रहा है, कैसे रहता होगा। तो जाते जाते उसने उस मछुआरे को कहा, अरे भाई मैं इसका इस राज्य का राजा हूं, तुम्हें जब कभी कोई भी कष्ट हो, क्योंकि तुमने मेरी मदद की है, मित्रता हो गई है, सप्तपदी मैत्री के कहा जाता है नीति का, सात कदम यदि किसी के तुम साथ चले तो वो तुम्हारा मित्र हो जाता है। यहां तो सात कदम की बात नहीं है, पूरी रात उसके आश्रय में रहा है इसलिए मित्र हो गया वो, तुम्हारे हमारी मैत्री हो गई है तो मेरे मित्र हो, हम तुम्हारे मित्र हैं, जब कभी भी तुमको कोई कष्ट हो तो मेरे राजमहल में आ जाना, हमको याद कर लेना, और कदाचित तुम्हें राजमहल में कोई घुसना न दे। तो कहते हैं उस राजा ने राजा की अपनी पहचान, हमेशा अपने हाथ की एक अंगूठी उसको दिया करता था। किसी को भी मित्रता हुई तो उसको पहचान के लिए कोई राजपुरुष पहरेदार चौकीदार गेट में ना रोके, इसके लिए उसको एक पहचान दिया जाता था, तो अंगूठी एक दे के आ जाता था, उसको भी दिया था, ये तुम्हें जरूर लेके आना ने, नहीं तो फिर रोक देंगे, चौकीदार अंदर घुसने नहीं देंगे। तो बोले अच्छी बात है, राजा चला गया अपने यहां। कुछ दिन के बाद उसने याद की, विचार किया कि राजा आया था, वो मित्र था, बुलाया था, जाना चाहिए, देखना चाहिए, उसके मिलना चाहिए। कुछ मच्छियां शहर में बेचनी थी, उसने सोचा शहर में बेच भी देंगे, मित्र से मिल भी लेंगे। आ गया, साथ में वो अंगूठी लेकर आ गया। पहले जब गेट में, राजमहल के गेट में जब वह पहुंचा मछुआरा, तो चौकीदारों ने उसको भगाना शुरू किया। अरे बाबा मैं अपने मित्र से मिलने आया हूं, तुम मुझे भगा रहे हो, मित्र ने बोला। कौन मित्र है तुम्हारे यहां? बोले यहां का जो मालिक है राजा। कैसी मूर्खता की बात करते हो, कहां राजा और कहां गंगू तेली, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां पूरे पृथ्वी का सम्राट राजा और कहां तू मछुआरा, ये दुर्गंध आ रहा, जा भाग। नहीं बाबा मुझे बुलाया है, तुम्हें विश्वास नहीं हो तो देख लो ये प्रमाण है। तो अंगूठी दिखाया उस मछुआरे ने, तो चौकीदार को विश्वास हो गया, क्योंकि राजा यही किया करते थे हमेशा ही। तो उसने अंगूठी दिखाई तो राजा को कहा गया कि एक ऐसा व्यक्ति आपका मित्र है, आया हुआ है, क्या करें? तो बोले भेजो, मेरा मित्र है तो जो भी हो भेजो। अंदर चला गया तो राजा ने देखा कि अरे वही मछुआरा आ गया है, वाह आओ मित्र, देख लो तुम्हारे हैं और मेरे वैभव को देख लो। बड़े अवभगत की स्वागत किया, सत्कार किया। राजा ने अपने दास सेवकों को कहा कि इसको ठीक से आतिथ्य सत्कार कराओ, बढ़िया महल में ले जाकर रखो, बढ़िया बिस्तर में सुलाओ, बढ़िया 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 पकवान खिलाओ उसको। तो राजा की आज्ञा थी कोई तकलीफ ना हो इसको, सेवक सेवा में खट गए, लग गए। अब तो उस मछुआरे के जो गंदे कपड़े थे सब उतरवा दिया, और राजा के जो कपड़े थे बढ़िया बढ़िया इत्र लगा हुआ हुआ, सेंट लगाया हुआ, कहा कि ये पहनी है। अब जब राजा के जो सेंट छिड़के हुए कपड़े वो राजा के तरफ से जो आए, अपने कपड़े उतारी, तो उसको उस कपड़ों में से इतनी दुर्गंध आई कि उसको पहनना ही नहीं चाहता था वो, फिर भी पहनना पड़ा, करे क्या। तो सेवकों ने उसकी जो कपड़ा थी उसको तो धो दिया अच्छी तरह, धोना क्या, फेंक दिया होगा वो, क्या जरूरत हो मछुआरे के कपड़े, फेंक दिया, आग लगा दी, कचरे में फेंक दी। अब रात भर वो परेशान हो गया वो कपड़े की दुर्गंध, बोले मेरा कपड़ा कहां है, वही लाओ भाई, ये कपड़े में तो पता नहीं क्या किस चीज का दुर्गंध है, मुझे तो वही कपड़ा लाओ। वो तो फेंक दिया। अरे तुमने क्यों फेंक दिया भाई, हमसे पूछे भी ना, तो ऐसा कपड़ा दिया ये, कोई अच्छा कपड़ा ला के देना चाहिए, दुर्गंधे कपड़े। सेवकों को समझ में नहीं आवे, ऐसे सुगंधित सेंट लगाया हुआ कपड़ा ये दुर्गंध कहता है, मूर्ख है। रात को कमरे में इत्र छिड़क दिया था, क्या सुगंधित था,